नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति आज से राज्य का दौरा करेगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 30 हुई, 81 लापता। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कहा, करदाता पिछले वित्त वर्ष के मांग आदेशों के संबंध में अपनी अपील अगले वर्ष जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना आज अपनी 51वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण करेगी। इसराइल ने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया। हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के भूकंप में 120 लोगों की मौत और 1000 लोग घायल। आईसीसी विश्व कप में भारत आज दोपहर 2 बजे चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज अंतर मंत्रालय समिति राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस समिति में कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। सिक्किम में इस महीने की 4 तारीख को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और 81 लोग लापता हैं। मृतकों में थल सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। बाढ़ से 1320 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 2563 लोगों को बचाया गया है, जबकि 26 लोग घायल हैं। इस समय लगभग 60025 लोग 30 राहत शिविरों में रह रहे हैं। बाढ़ से 13 पुल बह गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में आई बाढ़ में 8 सैन्यकर्मियों सहित कई अन्य लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कल अंतर मंत्रालय का एक केंद्रीय दल राज्य की 4 दिन की यात्रा पर पहुंचा। इस दल ने खेतों का दौरा किया और प्रभावित फसलों का आकलन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में फसल नुकसान की स्थिति की जानकारी भी मांगी। इस दल को विभिन्न जिलों में खड़ी फसलों के नुकसान से अवगत कराया गया। केंद्रीय दल के सदस्यों ने किसानों से बातचीत की और दल का दौरा आज भी जारी रहेगा। वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा और आयुध डिपो के पास संगम क्षेत्र में हवाई करतब दिखाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी। राज्य के उद्योग विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, थल सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग एयर मार्शल RGK कपूर भी उपस्थित रहेंगे। वायुसेना आज अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी करेगी। बमरौली में रस्मी परेड में स्काई पैरा जंपर्स अपने कर्तव्य दिखाएंगे। पहली बार महिला अग्निवीरों के बटालियन को भी परेड में शामिल किया गया है। हवाई प्रदर्शन में लड़ाकू जेट रफाल भी शामिल होगा। पहली बार 5 हेलीकॉप्टरों की टीम सारंग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा स्काई गंगा डिस्प्ले टीम भी एक्शन में होगी। कार्यक्रम में MiG-21 को औपचारिक विदाई दी जाएगी और परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कहा है कि हवाई करतब संगम, अरैल घाट, झूंसी, शास्त्री ब्रिज और आसपास के क्षेत्रों से आसानी से देखे जा सकेंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश से आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। गृहमंत्री कल देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था और आंतरिक तथा सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर, उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने मार्च 2023 तक कर जारी मांग आदेश के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। जीएसटी कानून के अनुसार सामान्यतः ऐसी अपील मांग आदेश जारी किए जाने के बाद 3 माह के भीतर दायर करनी होती है। इसे अधिकतम 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कल 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी पंजीकृत कारोबारों को मौजूदा 10% के स्थान पर 12.5% की मांग के विरुद्ध याचिका दायर करने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया। एक निर्णय के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने जीएसटी नियमों में संशोधन करते हुए जब्त की गई संपत्ति को 1 वर्ष पूरा होने के बाद मुक्त करने की अनुमति दी। जीएसटी कानून के अंतर्गत कर अधिकारी कर की गैर अदायगी की स्थिति में जीएसटी पंजीकृत संस्थानों के बैंक खातों सहित संपत्तियों को प्रावधिक रूप से उल्लंघन कर सकते हैं। भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्रनाथ पांडे ने कल पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और एक समीक्षा बैठक की। ये दौरा जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के केंद्र के संकल्प का एक हिस्सा थी। डॉ पांडे ने पुलवामा जिले में सभी स्कीमों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य को केंद्र की सभी योजनाओं के लाभ और सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि पुलवामा जिला सभी मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। डॉ पांडे ने पंचायती राज्य संस्थाओं, प्रखंड विकास परिषदों, जिला विकास परिषदों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक युवा शिष्टमंडल से भी मुलाकात की। उन्होंने पुलवामा में प्रशासनिक परिसर में पंच प्रण दिलाया, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत शहीदों के परिजनों के सम्मान में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। डॉ पांडे ने शहीदों के परिवारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और जिले की प्रगति में आम जनता की ओर से प्रशासन को दिए गए सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। लद्दाख में आज लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए मतगणना अब से कुछ देर पहले 8 बजे शुरू हो गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह पहला चुनाव था और करगिल के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरा भरोसा जताया। 4 अक्टूबर को हुए चुनाव में 77.6% मतदान हुआ। इस चुनाव में परिषद की 26 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से है। चुनाव में 85 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजरायल में हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और 1500 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमास लड़ाकों के 17 परिसरों तथा 4 ऑपरेशनल कमांड केंद्रों को निशाना बनाया है, जिनमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की कड़ी निंदा करते हुए युद्ध की घोषणा की है। खबरों के अनुसार इन हमलों में इजराइल में शार हेनेगेव क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख ऑफर लिप्स्टीन की भी मौत हो गई है। इजराइल के कई नागरिकों को गजा में बंधक बना लिया गया है। इस बीच विश्व के प्रमुख नेताओं ने हमास आतंकियों के इजराइल पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत की संवेदनाएं इजराइल के निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हमास के हमले पर आश्चर्य प्रकट किया है। हमास के हमले के बाद फलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रामलल्ला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। कार्यालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया है। नम्बर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929164। अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 120 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हैं। पश्चिमी शहर हेरात से लगभग 40 किलोमीटर दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कई इमारतें ढह गईं और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिन में 2 बजे से खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए एशियाई खेलों में भारत 28 स्वर्ण 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। भारत ने वर्ष 2018 में जकार्ता में बनाए गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को 37 पदकों से पीछे छोड़ दिया। भारत ने कल खेलों के 14वें दिन 6 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक हासिल किए। पेश है खेल डेस्क से हमारे खेल संवाददाता निखिल कुमार की ये रिपोर्ट।
भारत की पदक यात्रा पर हम नजर डालें तो सबसे ज्यादा 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर कुमार जेना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पारुल चौधरी और अविनाश साबले का डबल पोडियम, तजिंदर पाल सिंह तूर का शॉटपुट खिताब, 4x400 मीटर रिले टीमों का शानदार प्रदर्शन और तेजस्विन शंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ डेक्थलॉन और ट्रैक एंड फील्ड के यादगार लम्हे इन एशियाई खेलों के साक्षी बने। निशानेबाजी में भारत ने 22 पदक जीते और तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए। भारतीय निशानेबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की अगुवाई में सिफत कौर सामरा और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक जीते। दोनों ही क्रिकेट टीमों के लिए ये उनका पहला खिताब था। पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। हालांकि महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत का पहला बैडमिंटन गोल्ड जीता। एचएस प्रणॉय ने चोट के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स्ड डबल्स टेनिस का खिताब जीता। वहीं तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता। स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने भी सोना जीता जबकि रिकर्व टीमों ने 2 पदक हासिल किए। भारत ने 41 वर्षों में अपना पहला इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने एशियन गेम्स में अपने डेब्यू में रजत पदक और पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा जीता। इस बीच भारत के निकट जरीन, प्रीति पवार और परवीन हुड्डा ने पेरिस के लिए 3 अन्य बॉक्सिंग ओलंपिक कोटा भी हासिल किए। अदिति अशोक एशियन गेम्स में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया को रजत पदक मिला है। दोनों भारतीय शतरंज टीमों ने भी रजत पदक जीते हैं। भारत ने रोइंग, सेलिंग, वुशू, रोलर स्केटिंग, डिंगी और ब्रिज में भी पदक हासिल किए हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। एशियाई खेलों में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित की गई है। जनसत्ता की सुर्खी है, पहली बार 100 पार, एशियाई खेलों में भारत ने रचा इतिहास, अब तक 107 पदक। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, सोने से चमके हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के खिलाड़ी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द है, बेटियों ने रचा इतिहास, 100वां पदक कबड्डी से। मोटे अनाज से बने उत्पादों पर अब टैक्स नहीं, देशबंधु की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, मोटे अनाज पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हुआ। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, सर्दियों में ले बाजरे का आनंद, मिलेट्स के खुले आटे पर नहीं लगेगा जीएसटी। इसराइल पर हमास का बड़ा हमला, 100 की मौत, नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। रॉकेट हमले की आड़ में घुसे लड़ाके, दैनिक जागरण की सुर्खी है। तापमान गिरने के साथ राजधानी में गहरा सकता है प्रदूषण का संकट, जनसत्ता ने कहा है। नवभारत टाइम्स लिखता है, आ गए सांसों पर पहरे वाले दिन, 10 दिनों तक राजधानी की हवा खराब रहने की आशंका। 2 साल में सौर ऊर्जा कारोबार 4 गुना बढ़ा, भारत में बारूद का बाजार भी तेज, दैनिक भास्कर की खबर है। एआई से लैस होकर हमले कर रहे साइबर अपराधी, भारत भी बड़ा टारगेट, राजस्थान पत्रिका की खबर है। मिग-21 आज आखिरी बार एयर शो में, संगम के आसमान पर गरजेगा, भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति आज से राज्य का दौरा करेगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 30 हुई, 81 लापता। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कहा, करदाता पिछले वित्त वर्ष के मांग आदेशों के संबंध में अपनी अपील अगले वर्ष जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना आज अपनी 51वीं वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण करेगी। इसराइल ने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया, हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ। और आईसीसी विश्व कप में भारत दोपहर 2 बजे चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।